सोचो कि रात के वक्त किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे एक जगमगाते हुए शहर को देख रहे हैं।
हाँ, बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है वो।
बिल्कुल, रोशनियां हैं, चलते हुए ट्रैफिक की लाइंस हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सब कुछ एकदम साफ दिख रहा है।
राइट, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर समझ आ गया हो।
हाँ, लेकिन तब क्या हो जब अचानक पता चले कि जो कुछ भी आंखों के सामने दिख रहा है वो उस पूरे शहर का सिर्फ 5% हिस्सा है।
ओ वाओ, सिर्फ 5%?
हाँ, और बाकी 95% एक ऐसी अदृश्य चादर के पीछे छुपा है जिसे हमारी आंखें या सबसे ताकतवर दूरबीन भी नहीं देख सकती।
ये तो काफी अनसेटलिंग ख्याल है,
है ना? एक ऐसी सच्चाई जो वहां है, जिसका असर वहां है, पर जो कभी नजर नहीं आती। तो बिना किसी भारी शब्दजाल के इस गहरे विश्लेषण में आज हम यूनिवर्स के इसी सबसे बड़े रहस्य पर चर्चा करेंगे।
यह सच में एक बेहद रोचक विषय है,
और इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं डॉक्टर पेरी फिल्म्स के उस मशहूर लेक्चर को जिसका नाम है बिग बैंग, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, डार्क मैटर, मल्टीवर्सेस एंड अदर डिफिकल्टीज।
उस लेक्चर ने सच में कॉस्मोलॉजी को देखने का नजरिया बदला है।
सही कहा। तो सुनने वालों के सामने हमारा आज का मिशन ये है कि यूनिवर्स के इन मिसिंग पार्ट्स को ढूंढना है और बिग बैंग की जो प्लॉट होल्स हैं वो उन्हें बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से समझाना है।
और यही इस टॉपिक की सबसे हैरानगीज बात भी है। जैसे जब हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन से लेकर पूरे कॉस्मोस का आकार बनता है, तो ये सच में दिमाग को हिला देने वाला सफर लगता है।
अरे बिल्कुल, चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सीधा हमारे कॉमन सेंस से टकराती है।
अच्छा, कैसी बात?
देखिए, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सीधा सा काम है चीजों को अपनी तरफ खींचना, राइट? उनकी रफ्तार को धीमा करना।
हाँ, बेसिक फिजिक्स वही कहती है।
तो अगर मैं हवा में एक पत्थर फेंकूं तो वो ऊपर जाकर धीमा होगा और वापस जमीन पर आएगा।
सही बात है।
तो जब बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स तेजी से फैला, तो ग्रेविटी को यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ खींचकर इस फैलाव को धीमा करना चाहिए था ना?
लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए था।
पर पिछले कुछ दशकों में जो डेटा निकल कर आया उसने फिजिक्स की फाउंडेशन ही हिला दी। करीब 5 बिलियन साल पहले देखा गया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा, बल्कि वो और तेज हो रहा है।
एग्जैक्टली, एक्सेलरेट हो रहा है।
तो आखिर इस ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखा किसने? ये सबसे बड़ा सवाल है।
और इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें 1930s में वापस जाना होगा। फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक स्विस एस्ट्रोनोमर थे।
ओके, इन्होंने क्या ढूंढा था?
इन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। गैलेक्सी क्लस्टर्स यानी हजारों गैलेक्सीज का एक बड़ा झुंड। तो उन्होंने पाया कि क्लस्टर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं उनकी स्पीड इतनी तेज है कि उन्हें तो कब का बिखर कर डीप स्पेस में खो जाना चाहिए था।
वेट, बिखर जाना चाहिए था? क्यों?
क्योंकि वहां पर जितना मास या मैटर दिख रहा था उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि वो इतनी तेज घूमती हुई गैलेक्सीज को पकड़कर रख सके। मतलब मैथ के हिसाब से उन्हें तुरंत टूटकर अलग हो जाना चाहिए था।
ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे बच्चों का वो मरीगो राउंड झूला होता है ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल।
अगर उसे बेहद तेजी से घुमाया जाए तो बच्चे उड़कर बाहर गिर जाएंगे। वो तभी बचे रह सकते हैं जब तक कि उन्हें किसी अनजानी अदृश्य सीट बेल्ट ने बांध कर ना रखा हो।
सही एनालॉजी है।
मतलब कोई अदृश्य फोर्स है जो गैलेक्सीज को रोके हुए है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लीजिए, मर्क्यूरी सूरज के पास है तो तेज घूमता है,
राइट? क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है।
और प्लूटो दूर है तो धीमा घूमता है। पर गैलेक्सीज में ऐसा नहीं हो रहा था क्या?
यहाँ सबसे हैरानगी इस बात ये है कि ये अदृश्य सीट बेल्ट सिर्फ बड़े क्लस्टर्स में नहीं थी। वेरा रूबिन ने बाद में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया,
जो कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, राइट?
हाँ, तो वेरा रूबिन ने देखा कि एंड्रोमेडा के आउटर पार्ट्स के तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितने इनर पार्ट्स के तारे।
अरे, ये कैसे पॉसिबल है? आउटर स्टार्स को तो धीमा होना चाहिए था।
वही तो, पर वो भी तेज घूम रहे थे और गैलेक्सी के बाहर बिखर कर उड़ नहीं रहे थे।
तो ये अदृश्य सीट बेल्ट आखिर है क्या?
इसे आज हम डार्क मैटर का हेलो या प्रभामंडल कहते हैं। ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, मतलब ना ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है ना एब्जॉर्ब करता है।
ओ, तो इसलिए हमें दिखता नहीं है।
एग्जैक्टली, हम इसे सिर्फ इसकी ग्रेविटी के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं जानते ये क्या है, पर ये वहां मौजूद जरूर है।
ये बड़ा परेशान करने वाला लॉजिक है। अगर डार्क मैटर दिखता ही नहीं है तो हमें यूनिवर्स में इसकी एग्जैक्ट मात्रा का पता कैसे चलता है?
इसके लिए हम यूनिवर्स की सबसे पुरानी तस्वीर की तरफ मुड़ते हैं।
सबसे पुरानी तस्वीर?
हाँ, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इरेडिएशन या शॉर्ट में CMBR कहते हैं।
ओके, तो ये बेसिकली बिग बैंग की बची हुई रोशनी है।
सही कहा। आज एटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप जैसी बेहद प्रिसाइज मशीन्स आसमान में इस बैकग्राउंड रेडिएशन के टेम्परेचर मैप को नापती हैं।
अच्छा, उस मैप में क्या दिखता है?
उसमें हमें टेम्परेचर के छोटे छोटे अंतर दिखते हैं, जिसे हम स्प्लॉचेस या धब्बे कह सकते हैं, और ज्यादातर धब्बे आसमान में करीब 8 डिग्री के डायमीटर के होते हैं।
1 डिग्री के स्प्लॉचेस? ओके, इससे डार्क मैटर का कैसे पता चलता है?
जब इन स्प्लॉचेस का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनता है तो उस ग्राफ से हमें यूनिवर्स का एग्जैक्ट मेकअप मिल जाता है, जैसे बैरियोनिक मैटर कितना है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और यूनिवर्स की ज्योमेट्री क्या है।
बैरियोनिक मैटर मतलब?
बैरियोनिक मैटर यानी वो नॉर्मल मैटर जिसे हम देख सकते हैं, हम, आप, तारे, गैस।
गॉट इट। तो मॉडल में सब बैलेंस हो गया?
हाँ, पर इससे कॉस्मोलॉजी में एक नया हबल क्राइसिस पैदा हो गया।
हबल क्राइसिस? ये क्या नया संकट आ गया?
देखिए, CMBR से VMA सैटेलाइट ने यूनिवर्स के फैलने की जो स्पीड निकाली, जिसे हबल कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरी तरफ आसमान में स्टार्स या सुपरनोवास को देखकर जो स्पीड निकाली गई, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया।
वेट, कितना बड़ा अंतर?
इसे 3 सिग्मा डिफरेंस कहा गया। मतलब मैथ्स की भाषा में ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, डेटा दोनों तरफ सही थे पर मैच नहीं कर रहे थे।
लेकिन एक मिनट, अगर मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस्ड और प्रिसाइज है तो मेजरमेंट में इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया? पूरा स्टैंडर्ड मॉडल ही गलत हो गया क्या?
शुरू में लोग घबरा गए थे, पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की वेंडी फ्रीडमैन ने इस गैप को काफी हद तक भर दिया।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सुपरनोवास को छोड़कर रेड जाइंट ब्रांच स्टार्स का इस्तेमाल किया। ये ऐसे तारे हैं जिनकी चमक एक पॉइंट पर हमेशा फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल होती है।
ओह, यानी एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक मिल गई उन्हें दूरी नापने के लिए।
बिल्कुल, और उन कैलकुलेशंस के बाद CMBR और स्टार्स के रेट में अब सिर्फ 5% का मार्जिन बचा।
सिर्फ 5%?
हाँ, और ब्रैडफोर्ड बेंसन का पर्सपेक्टिव इस पर बड़ा सही है। वो कहते हैं कि दो बिल्कुल अलग एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना से निकाले गए नंबर्स का 5% मार्जिन के अंदर मिलना क्राइसिस नहीं है।
तो क्या है
ये? तो कॉस्मोलॉजी की एक बहुत बड़ी जीत है।
सही बात है, हबल कांस्टेंट की उलझन तो सुलझ रही है लगता है, पर इन स्प्लॉचेस को देखकर बिग बैंग के सामने दो नई नामुमकिन लगने वाली समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, राइट?
हाँ, जिन्हें हम होराइजन प्रॉब्लम और फ्लैटनेस प्रॉब्लम कहते हैं।
ये दोनों दिमाग खराब करने के लिए काफी हैं।
बिल्कुल, पहले होराइजन प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर आज हम आसमान में देखें तो हमारे लेफ्ट साइड का होराइजन 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है।
ओके,
और राइट साइड का होराइजन भी 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है।
यानी टोटल दूरी हो गई 28 बिलियन लाइट ईयर्स।
सही, पर लाइट जो कि यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, वो कभी इन दो हिस्सों के बीच ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि यूनिवर्स की उम्र ही 14 बिलियन साल है।
तो प्रॉब्लम कहाँ आती है?
प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों लेफ्ट और राइट होराइजन्स का टेम्परेचर और मेकअप बिल्कुल एक जैसा है।
वेट, अगर लाइट वहां तक पहुंची ही नहीं तो उन्होंने आपस में टेम्परेचर शेयर कैसे किया? वो नॉर्मलाइज कैसे हो गए?
यही तो रहस्य है, बिना इंटरैक्ट किए उनका टेम्परेचर सेम कैसे हो सकता है?
यहाँ से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। और फिर आती है फ्लैटनेस प्रॉब्लम। जॉर्ज स्मूथ ने मेजर किया कि हमारा यूनिवर्स लगभग परफेक्टली फ्लैट है।
हाँ, 1 part in 250 की एक्यूरेसी के साथ।
पर बिग बैंग के तुरंत बाद इस एक्यूरेसी को मैथमेटिकली 1 part in 10 की पावर 60 होना जरूरी था। ये नंबर कितना बड़ा है, इसे सुनने वालों के दिमाग में बैठाने के लिए मैं उस डक वाले उदाहरण को लाना चाहूंगा।
जरूर, वो एनालॉजी बहुत इफेक्टिव है।
तो मान लीजिए एक खाड़ी के दूसरे छोर पर एक बत्तख तैर रही है और आपको यहाँ से राइफल से उस पर निशाना लगाना है।
ओके।
अगर दूरी कम है तो निशाना आसान है, पर दूरी बढ़ने के साथ निशाना और भी प्रिसाइज होना पड़ता है। और अगर आप 1 part in 10 की पावर 60 की बात करें तो ये तो दूर आसमान में एक इनविजिबल पॉइंट पर निशाना लगाने जैसा है। मैथमेटिकली ये नामुमकिन लगता है।
बिल्कुल, और इसी पर जॉन कैल्विन जैसा एक थॉट निकल कर आता है कि दैट्स द वे द मॉप फ्लॉप्स, यानी बस ये ऐसा ही बनाया गया है।
पर साइंस इज गॉड ऑफ द गैप्स वाले थॉट को तो नहीं मान सकती ना?
नहीं, साइंस एक डिटर्मिनिस्टिक आंसर ढूंढती है बिना किसी अनसीन हाथ के, और वो आंसर एक ही शब्द में छुपा है,
क्या?
कॉस्मिक इन्फ्लेशन। एमआईटी में एलन गुथ ने ये थ्योरी पेश की थी।
एलन गुथ की कॉस्मिक इन्फ्लेशन, इसने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया?
देखिए, बिग बैंग के बस 10^-37 सेकंड्स बाद एक छोटा सा सीड था, बहुत ही माइक्रो साइज का।
ओके।
अचानक से उसमें रिपल्सिव ग्रेविटी आई जिसने उसे बाहर की तरफ धकेला और वो सीड 10^28 times फैल गया, लगभग एक ग्लास मार्बल के आकार का हो गया।
सिर्फ मिली सेकंड्स के हिस्से में इतना बड़ा एक्सप्लोजन?
हाँ, और ये थ्योरी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करती है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स की। वो पार्टिकल्स थियोरेटिकली वहां होने चाहिए थे पर दिखते नहीं।
अच्छा, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो स्पेस में इतना दूर बिखर गए कि अब ढूंढना नामुमकिन है।
बिल्कुल, एग्जैक्टली।
पर वेट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या अचानक इतनी तेज स्पीड से चीजों का फैल जाना स्पेस टाइम की स्पीड लिमिट यानी स्पीड ऑफ लाइट का उल्लंघन नहीं है? होराइजन प्रॉब्लम इसे कैसे सॉल्व हुई?
यही तो इसकी खूबसूरती है। स्पेस के अंदर कोई मटेरियल लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा रहा था, यहाँ स्पेस यानी अंतरिक्ष खुद फैल रहा था।
स्पेस खुद फैल रहा था, वाओ।
और फैलने से पहले सभी वेरिएशंस उस छोटे से सीड में थे, तो उन्हें अपना टेम्परेचर मिक्स और फ्रीज करने का पूरा वक्त मिल गया था।
ओ, तो फैलने से पहले ही उन्होंने सब शेयर कर लिया था। और फ्लैटनेस प्रॉब्लम का क्या?
उसके लिए हम एक गुब्बारे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर एक चींटी एक छोटे गुब्बारे पर चल रही है तो उसे कर्व्ड सरफेस महसूस होगी, है ना?
हाँ, गुब्बारा गोल होता है।
उस पे बनाए गए ट्रायंगल के एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा होंगे, पर अगर उस गुब्बारे को अचानक अर्थ के साइज का फुला दिया जाए तो चींटी को क्या दिखेगा?
फिर तो उस चींटी को सब कुछ बिल्कुल फ्लैट ही दिखेगा।
एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन ने वही किया। यूनिवर्स कितना भी कर्व्ड रहा हो, इस पुश ने हर रिंकल को कम्प्लीटली फ्लैट और स्मूथ कर दिया।
क्या बात है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन्फ्लेशन से बिग बैंग के होल्स तो सॉल्व हो गए, पर ये थियोरी अपने ही साथ कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा और थोड़ा डरावना फिलोसॉफिकल आइडिया लेकर आती है।
आप मल्टीवर्स की बात करें?
बिल्कुल, क्योंकि अगर एक सीड इस तरह से फैल सकता है तो और सीड्स क्यों नहीं फैल सकते? अनंत यूनिवर्स क्यों नहीं हो सकते?
सही कहा। और मल्टीवर्स की ये थियोरी डार्क एनर्जी की एक सबसे बड़ी उलझन को समझाने की कोशिश करती है।
डार्क एनर्जी की कौन सी उलझन?
देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब हम खाली स्पेस को देखते हैं तो वहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स पॉप इन और पॉप आउट होते रहते हैं।
यानी खाली स्पेस एक्चुअली खाली नहीं है।
हाँ, और उन पार्टिकल्स की वजह से जो वैक्यूम एनर्जी होती है, मैथमेटिक्स कहती है कि वो एनर्जी 10^120 times ज्यादा होनी चाहिए।
एक के बाद 120 जीरो, ये तो बहुत ज्यादा है।
इसे साइंस की सबसे एम्बैरेसिंग थियोरेटिकल प्रिडिक्शन कहा जाता है। अगर सच में एनर्जी इतनी ज्यादा होती तो यूनिवर्स फटकर बिखर जाता,
और थोड़ी सी भी कम होती है तो क्रश होकर वापस कोलैप्स हो जाता ना।
बिल्कुल ठीक।
तो इस 10^120 वाले गैप को मल्टीवर्स कैसे भरता है?
स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक लगभग 10^500 पोटेंशियल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, यानी हर एक बबल अपनी अलग डार्क एनर्जी लेकर एग्जिस्ट कर सकता है।
इस आइडिया पर कॉस्मोलॉजिस्ट का कितना भरोसा है? इस पर एक जोक मुझे याद आ रहा है।
ओ, मार्टिन रीज वाला जोक।
हाँ, मार्टिन रीज ने कहा कि इस मल्टीवर्स मैथ पर मैं अपने कुत्ते की जान दांव पर लगा दूंगा। आंद्रे लिंडे बोले, मैं अपनी खुद की जान दांव पर लगाऊंगा।
और स्टीवन वाइनबर्ग ने क्या कहा था?
वाइनबर्ग बोले कि भाई, इस मैथ के लिए मैं दोनों का कुत्ता और जान बैंक पर लगाने को तैयार हूँ।
सच में। पर इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, हम आखिर उस एग्जैक्ट यूनिवर्स में कैसे हैं जहां डार्क एनर्जी लाइफ के लिए इतनी परफेक्ट है?
यही तो मैं भी सोच रहा था।
यहाँ आता है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी भी कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम बस रैंडमली एक ऐसे सीन पे पैदा हुए हैं जहाँ कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करती हैं।
यानी हम तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि कंडीशंस हमारे हिसाब से बनी हुई थी, बाकी बबल्स शायद वीरान पड़े होंगे।
हाँ, हम स्पेशल नहीं है, बस एक मैथमेटिकल लक का नतीजा है।
क्या जबरदस्त जर्नी रही है, एक क्वांटम सीड के कॉस्मिक इन्फ्लेशन से शुरू होकर डार्क मैटर की अदृश्य सीट बेल्ट और फिर CMBR के स्प्लॉचेस से उभरकर अनंत मल्टीवर्स तक का ये सफर।
और विलेनकिन और पूरोव की एक क्लेम तो और भी मिस्टिफाइंग है सब में।
उन्होंने क्या पॉइंट दिया?
उनका पॉइंट है कि जब क्वांटम टनलिंग से यूनिवर्स ऑलमोस्ट नथिंगनेस से पैदा हुआ तो उस वक्त मैटर से भी पहले वहां कौन था?
कौन था?
फिजिक्स के नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स पहले से वहां मौजूद थे मैटर को फॉर्म देने के लिए।
वाओ, फिजिक्स मैटर से पहले आई?
ये ऑब्जर्वेशन तो डायरेक्ट उस पावरफुल कोट की तरफ मुड़ती है जो रॉबर्ट जैस्ट्रो ने दिया था। हाँ, जस्ट्रो कहते हैं कि जब एक साइंटिस्ट अपनी अज्ञानता की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है और आखिरी पत्थर के ऊपर से आगे झांकता है, तो वहां सदियों से बैठे थियोलॉजियंस का एक झुंड उसका स्वागत करता है।
ओह मैन, ये कोट बहुत हिट करता है।
साइंस की सीमाएं यहीं आकर थोड़ी धुंधली हो जाती हैं।
सही में।
तो आज इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं अपने सुनने वालों के लिए एक नया सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूँ।
जरूर।
अगर हमारा ये विजिबल यूनिवर्स एक अनंत मल्टीवर्स के समुन्द्र में सिर्फ एक पानी का बुलबुला है, जिसका डार्क एनर्जी और फ्लैटनेस का बैलेंस हमारे होने के लिए परफेक्टली अलाइन हुआ है, तो क्या यह संभव नहीं कि उन अनंत दूसरे बबल्स में जिंदगी ने बिल्कुल ही अलग फिजिक्स के नियम अपनाए होंगे?
ये एक बेहद गहरा ख्याल है। राइट। एक ऐसी जिंदगी या बायोलॉजिकल आकार जिसके बारे में शायद हमारी करंट साइंस और कॉस्मोलॉजी अभी कल्पना भी नहीं कर सकती। अपने उस अकेलेपन को या अपनी उस यूनिकनेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का शायद अब वक्त आ गया है।
ये सच में कॉस्मोलॉजी का नया होराइजन है।
बिल्कुल। तो आज की चर्चा हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है यूनिवर्स के इन रहस्यों ने आपको उतना ही प्रभावित किया होगा जितना हमें। अगली बार तक के लिए सोचें और आसमान की तरफ देखते रहें।